नमस्कार, आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जिसे मॉडर्न अमेरिकन लिटरेचर का एक मील का पत्थर माना जाता है। यह है जुनोद डियाज का 2008 का पुलित्ज़र पुरस्कार विजेता उपन्यास द ब्रीफ वंडरस लाइफ ऑफ ऑस्कर वाओ।
और यह सिर्फ एक किताब नहीं, एक पूरा अनुभव है।
बिल्कुल, और डियाज की जो लिखने की शैली है ना,
कमाल की है। ऐसा लगता है जैसे आपका कोई बहुत पढ़ा लिखा लेकिन दिल से देसी दोस्त आपको कहानी सुना रहा हो।
हाँ, जिसमें आपको अकादमिक भाषा मिलेगी, सड़कों पर बोले जाने वाली स्लैंग मिलेगी
और स्पैनिश अंग्रेजी का एक मजेदार मिश्रण भी, जिसे स्पैंग्लिश कहते हैं।
सही कहा, ये कहानी एक परिवार की कई पीढ़ियों तक फैली हुई है।
हाँ, जिसमें इतिहास, पहचान और प्यार के धागे बड़ी खूबसूरती से बुने गए हैं।
और इन सब धागों के बीच में एक गांठ है, एक श्राप की गांठ।
डोमिनिकन संस्कृति में से फुकू कहते हैं।
और उपन्यास इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमता है, क्या हमारी किस्मत हमारे पुरखों के किए धरे और सहे हुए दुखों से बंधी होती है,
या फिर एक इंसान का प्यार और हिम्मत उस किस्मत को पलट सकता है?
और इसी सवाल से जूझ रहा है हमारा हीरो ऑस्कर डी लियोन।
हाँ, ऑस्कर, चलिए सुनने वालों के लिए उसकी एक तस्वीर बनाते हैं।
जरूर।
ऑस्कर न्यू जर्सी में रहता है, एक डोमिनिकन अमेरिकी नौजवान है। थोड़ा मोटा है, नर्डी है,
मतलब किताबों और कॉमिक्स की दुनिया में खोया रहने वाला।
बिल्कुल, और दिल में बेपनाह प्यार भरा है। उसकी दुनिया साइंस फिक्शन, कॉमिक्स और जापानी कार्टून से आबाद है।
उसका सपना है कि वो डोमिनिकन संस्कृति का JRRR टॉल्किन बने।
लेकिन उसका सबसे बड़ा सपना तो बस प्यार पाना है।
लेकिन प्यार उससे ऐसे भागता है जैसे पता नहीं क्या।
हाँ, उसकी हर कोशिश नाकाम होती है।
और उपन्यास हमें बताता है कि इसकी वजह सिर्फ उसका अजीब व्यवहार नहीं है, बल्कि उसके परिवार पर लगा वो श्राप है, फुकू।
अब सवाल उठता है कि ये फुकू है क्या?
हाँ, कोई मामूली अंधविश्वास?
हाँ नहीं, यही तो इस उपन्यास की सबसे बड़ी खूबी है। डियाज इस फुकू को कोई हवा हवाई बात नहीं बनाते। वो इसे डोमिनिकन गणराज्य के इतिहास की एक ठोस, खौफनाक सच्चाई से जुड़ते हैं।
आप तानाशाह राफेल त्रुहियों के शासन की बात कर रहे हैं।
बिल्कुल, त्रुहियों, जिसे एल हेफे यानी द बॉस भी कहा जाता था, उपन्यास का असली विलन है।
भले ही कहानी के समय तक वो मर चुका है।
हाँ, पर उसकी तानाशाही का आतंक, उसकी हिंसा और सत्ता का नशा, असल में वही वो श्राप है जिसने ऑस्कर के परिवार की नींव हिला दी थी।
मतलब हर व्यक्तिगत त्रासदी की जड़ एक राष्ट्रीय त्रासदी में है।
सही कहा।
तो इस श्राप की जड़ों तक पहुँचने के लिए हमें ऑस्कर के परिवार की कहानियों में उतरना होगा, है ना?
बिल्कुल, और इसकी जड़ें समझने के लिए हमें परिवार की महिलाओं को देखना होगा,
खासकर उसकी बहन लोला और उसकी माँ बेली को।
हाँ, लोला से शुरू करते हैं, जो ऑस्कर से एकदम अलग है।
वो सुंदर है, तेज है, विद्रोही है।
हाँ, जहाँ ऑस्कर अपनी कल्पना की दुनिया में छिप जाता है, वहीं लोला असल दुनिया से सीधी टक्कर लेती है।
वो अपनी माँ की दम घोटने वाली पकड़ से आजाद होना चाहती है
और परिवार के अतीत के बोझ से भागना चाहती है, लेकिन भाग नहीं पाती। एक तरह से वो ऑस्कर की प्रोटेक्टर भी है और परिवार का वो लंगर भी जो उसे बिखरने से बचाता है।
लोला का गुस्सा और भागने की कोशिश समझ आती है, खासकर जब हम उनकी माँ हिपाटिया बेली कब्राल की कहानी जानते हैं।
बेली एक बहुत सख्त, डरावनी माँ।
लेकिन उपन्यास हमें दिखाता है कि उसकी ये सख्ती एक कवच है।
हाँ, एक कवच जो उसने अपने जख्मों को छिपाने के लिए पहना हुआ है, और उसके जख्म बहुत गहरे हैं।
कहानी हमें उसके अतीत में ले जाती है, तुरोहियों के डोमिनिकन गणराज्य में।
हाँ, बेली एक बहुत खूबसूरत अनाथ लड़की थी। उसे द गैंगस्टर नाम के एक आदमी से प्यार हो जाता है,
जो त्रुहियों के करीबी सर्कल का हिस्सा था
और त्रुहियों की बहन से शादीशुदा भी।
तो ये एक वर्जित प्रेम संबंध था
जो उसके परिवार के लिए फुकू का असली स्रोत बन जाता है। यही दर्द वो अपने साथ अमेरिका ले आई थी।
एक बात जो इस उपन्यास को और भी दिलचस्प बनाती है वो है इसका कथावाचक
यूनियर।
हाँ, कहानी हमें कोई तीसरा व्यक्ति नहीं सुना रहा, बल्कि यूनियर सुना रहा है जो खुद कहानी का एक किरदार है।
वो ऑस्कर का कॉलेज का रूममेट था और लोला का बॉयफ्रेंड भी रह चुका है।
तो सवाल ये है कि क्या हम उसकी बातों पर पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं?
ये एक बेहतरीन सवाल है। यूनियर एक क्या कहते हैं,
अनरिलायबल नरेटर है,
एक अविश्वसनीय कथावाचक।
हाँ, वो उस ठेठ डोमिनिकन माचिज्मो या मर्दानगी का प्रतीक है जो ऑस्कर में बिल्कुल नहीं थी।
वो ऑस्कर को कभी पूरी तरह समझ ही नहीं पाया। नहीं, लेकिन यही उसकी नरेशन की ताकत भी है। वो अपराध बोध से भरा हुआ है।
उसे लगता है कि उसने ऑस्कर को निराश किया, लोला को धोखा दिया।
इसलिए डीलियोन परिवार की ये कहानी सुनाना उसके लिए एक तरह का प्रायश्चित है, ये उसका जाफा है।
जाफा यानी फुकू के असर को काटने वाला एक पलटा मंत्र।
बिल्कुल।
तो कहानी सुनाना अपने आप में श्राप से लड़ने का एक तरीका बन जाता है।
हाँ, ये उन यादों को जिंदा रखने की कोशिश है जिन्हें इतिहास और जुल्म मिटा देना चाहते हैं।
बिल्कुल। और अब कहानी वापस ऑस्कर पर आती है।
हाँ, सालों की निराशा के बाद एक उदास और भटका हुआ ऑस्कर गर्मियों की छुट्टियों में सैंटो डोमिंगो जाता है
और वहाँ उसे जिंदगी में पहली बार सच्चा गहरा प्यार होता है
एक उम्रदराज वेश्या से जिसका नाम है इबोन।
और यहीं पर इतिहास खुद को दोहराता है ना?
हाँ।
एक और खतरनाक प्यार, एक और ताकतवर दुश्मन।
हाँ, इबोन का एक बॉयफ्रेंड है, एक हिंसक पुलिस कप्तान जो उसी भ्रष्ट सिस्टम का प्रतीक है जिसे त्रुहियो पीछे छोड़ गया था।
परिवार उसे चेतावनी देता है लेकिन ऑस्कर मानता नहीं है।
जिंदगी में पहली बार वो किसी चीज के लिए बिना डरे खड़ा होता है और उसे इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है।
उसे भी उसी गन्ने के खेत में ले जाकर पीटा जाता है।
हाँ, ठीक वैसे ही जैसे सालों पहले उसकी माँ को पीटा गया था। फुकू अपना चक्र पूरा करता हुआ नजर आता है
लेकिन यहाँ कहानी में एक मोड़ आता है।
ऑस्कर उस पिटाई से बच जाता है, उसे वापस अमेरिका भेज दिया जाता है।
सब सोचते हैं कि अब वो सुधर जाएगा, डर जाएगा,
पर गहरे साहस और अवज्ञा के एक पल में वो फैसला करता है वापस जाने का इबोन के पास,
ये जानते हुए भी कि ये मौत को दावत देना है।
हाँ, लेकिन वो डर के आगे झुकने से इनकार कर देता है
और अंत में वही होता है जिसका डर था।
उसे फिर से कप्तान के आदमी उसी गन्ने के खेत में घेर लेते हैं लेकिन इस बार ऑस्कर एक विक्टिम नहीं है।
वो गिड़गिड़ाता नहीं है।
नहीं, वो इबोन के लिए अपने प्यार का ऐलान करता है और अपनी मौत का सामना शान से करता है।
यूनियर हमें बताता है कि ऑस्कर के आखिरी खतों में कोई डर नहीं था
बल्कि एक शांति और हैरानी थी। उसने लिखा था, मेरी जिंदगी लंबी नहीं थी लेकिन ये अद्भुत थी।
उसने आखिर वो पा लिया था जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी,
प्यार और उसे जाहिर करने की हिम्मत।
तो ऑस्कर का अंत एक जीत है या हार? आखिर में तो वो मर जाता है।
यही तो उपन्यास की खूबसूरती है।
अच्छा,
डियाज ये तर्क दे रहे हैं कि जीत हमेशा जिंदा बच जाने में नहीं होती। उस माहौल में जहाँ प्यार को कमजोरी मानकर कुचल दिया जाता था,
वहाँ प्यार को चुनना अपने आप में एक विद्रोह है।
हाँ, ये उस सिस्टम को नकारना है जिसने उसकी माँ को तोड़ा था।
तो ऑस्कर का आखिरी काम मौत के मुँह में प्यार को चुनना
फुकू पर उसकी नैतिक जीत है, भले ही शारीरिक रूप से वो हार गया हो।
इस किताब में जो फुटनोट्स हैं वे भी बहुत अनोखे हैं, कभी कभी तो पूरे पूरे पेज के फुटनोट्स हैं।
हाँ, और शुरुआत में ऐसा लग सकता है कि ये कहानी का प्रवाह तोड़ रहे हैं
लेकिन ऐसा है नहीं।
नहीं,
डियाज हमें बार बार ये याद दिला रहे हैं कि ऑस्कर के परिवार की निजी कहानी को डोमिनिकन गणराज्य के क्रूर इतिहास से अलग करके नहीं देखा जा सकता।
आप परिवार की त्रासदी को देश की त्रासदी के बिना समझ ही नहीं सकते।
बिल्कुल।
और एक और विषय जो ये उपन्यास उठाता है वो है माचिज़्मो या मर्दानगी की पारंपरिक परिभाषा पर सवाल।
हाँ, ऑस्कर किसी भी तरह से एक माचो डोमिनिकन मर्द के सांचे में फिट नहीं बैठता।
वो मोटा है, शर्मीला है, उसे लड़ाई झगड़े से ज्यादा किताबों से प्यार है।
और ये उपन्यास इस बात की एक शक्तिशाली आलोचना है कि कैसे मर्दानगी की ये संकीर्ण परिभाषाएं उन लोगों को नुकसान पहुंचाती हैं जो अलग होते हैं।
ऑस्कर का किरदार हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि असली हिम्मत शायद मुक्के चलाने में नहीं है
बल्कि टूटे हुए दिल के साथ भी प्यार करते रहने में है। तो ये कहानी हमें दिखाती है कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, वो हमारे खून में, हमारी कहानियों में जिंदा रहता है।
और ये भी कि उस इतिहास के बोझ के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार शायद प्यार करने का साहस ही है, भले ही उसकी कीमत कुछ भी हो।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।